We thank God for his mercy that he has given us one more day in our life.
और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी दया के लिए कि एक और नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज दिया है।
When God had created Adam and Eve, He had created them in the Garden of Eden.
और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उनकी रचना की तब अदन की वाटिका में उनको बनाया।
And then He said, and He just gave one commandment to them not to eat of the tree of the knowledge of good and evil.
और केवल परमेश्वर ने तब उनको एक ही आज्ञा दी कि भले बुरे के वृक्ष का जो ज्ञान का जो वृक्ष है उसमें से उनको नहीं खाना है।
And he told them then to if they obey God then they will become holy. God wanted them to become holy.
और परमेश्वर ने उनको कहा था कि अगर उनकी आज्ञा को मानेंगे तो वो परमेश्वर चाहता था कि वो पवित्र बने उसके द्वारा।
But we know that they fell and they disobeyed God and ate of the fruit.
और हम जानते कि वो वहाँ पे गिर गए और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस फल को उन्होंने खाया।
And they were cast out of the Garden of Eden.
और उस अदन की वाटिका के वो बाहर निकाल दिए गए।
And then after that we see rapidly so many sins, all the sins, different sins came into man.
और उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही जल्दी से अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के पाप जो है मनुष्य में आते गए।
It became so worse that in the time of Noah, God says that he was going to destroy the whole world because of the sin.
और ये पाप इतने बदतर और इतने बुरे बनते गए कि नोआ के समय में परमेश्वर ने उन लोगों के पाप की वजह से उनको नाश करने की योजना बनाई।
So it says about Noah that he was a preacher of righteousness.
और नोआ के बारे में लिखा है कि वो धार्मिकता का प्रचारक था।
He used to preach about that God is going to send a judgment on everyone.
और नोआ जो है इस प्रकार प्रचार करता था कि परमेश्वर अपने न्याय को हर व्यक्ति के ऊपर लाने जा रहा है।
So to he was telling them to get right with God and to come to the ark.
और इसलिए वो लोगों से कहता था कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक करे और उस वो जहाज जो उसने बनाया उसके अंदर वो आ जाए।
So right from that time this preaching of repentance was there.
और उस समय से लेकर वो मन फिराने का जो प्रचार जो संदेश प्रचार किया जाता है।
Even Enoch used to we read in Jude that Enoch also used to preach about turning the people from their sin to God.
और यहूदा की पुस्तक के अंदर हम हनोक के बारे में भी पढ़ते कि वो भी मन फिराने के ऊपर प्रचार करता था।
I was thinking of there can be two types of repentance. We can have a false repentance or a true repentance in our lives.
और मैं सोच रहा था कि दो प्रकार के मन फिराना हो सकता है। पहला तो एक सही है और दूसरा एक गलत प्रकार का जो मन फिराना है।
We look at one of the false repentance in the Bible.
और एक झूठा जो मन फिराना जो होता है बाइबल के अंदर से हम उसको देख सकते हैं।
When the Israelites were in the land of Egypt and they were longing to be free from their bondage.
इस्राएली लोग जो मिस्र की गुलामी में थे और वो चाहते थे कि उस गुलामी में से वो छुटकारा प्राप्त करे।
God raised Moses as a leader to free them from them.
और परमेश्वर ने वहां मूसा को एक अगुवे के रूप में खड़ा किया ताकि उनको वहां से छुड़ा सके।
And we read that God told Moses that Pharaoh will not immediately leave the people. He will not listen to you when you tell him that that we want to be come out of this Egypt.
और वहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है कि फारो जो है तेरी बातों को नहीं सुनेगा जब तू कहेगा कि हम इजिप्ट मिस्र से बाहर निकलेंगे वो नहीं जाने देगा या नहीं सुनेगा।
So we read that in Exodus 8th chapter we read that God brought about one plague after another.
और वहाँ पे निर्गमन 8 अध्याय के अंदर हम देखते कि एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति परमेश्वर मिस्र के वहाँ पर भेजता है।
But we read that after each plague is over, first plague is over, Pharaoh said, okay, you can, I'll allow them to go. But again, when the next plague comes, he again hardened his heart and again went back from his word and said, I will not leave them.
और हर विपत्ति के बाद हम देखते हैं कि फारो राजा उस विपत्ति के बाद ये पहली या दूसरी विपत्ति के बाद वो कहता है कि हाँ मैं जाने दूंगा। उसके बाद तुरंत ही अपने मन को कठोर कर देता है और फिर वो उनको नहीं जाने देता है।
So this can be a type of repentance that we have that like now we reflect on our lives during the lockdown and we say that okay, I will once the lockdown is over, I will set right these things. But once the lockdown is over and we live in a we again turn back to our old ways.
और ये हो सकता है कि अब ये लॉकडाउन का ऐसी हालातें हैं, परिस्थिति आसपास में है, तो मैं मन फिराऊंगा, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में करूंगा. ये जब खत्म हो जाएगा तो पहले के जो पुराने जो मार्ग है या तरीके है या जीवन जीना है उसके अंदर मैं वापस लौट जाऊंगा.
So that shows that I have not repented. It is just the fear of something that has caused me to turn. So that when that thing, when that danger goes away, again come back to my old ways.
और इसका मतलब यह है कि मैंने सही में मन नहीं फिराया है. किसी न किसी चीज का डर है या खतरा है जिसके वजह से मैं इस मन फिराने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूं. लेकिन ये जब खतरा मिट जाएगा तब मैं अपने पुराने मार्गों के अंदर लौट जाऊंगा.
Like sometimes God allows some sickness in our lives and once the sickness is I'm set free from the sickness I again come back to my old ways when God told me when God shows me some areas where I need to repent.
और कई बार होता है कि बीमारी परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति दे सकता है लेकिन फिर बीमारी खत्म होने के बाद हो सकता है कि परमेश्वर कई शारीरिक क्षेत्रों के अंदर मुझे मन फिराने के लिए कह सकता है.
Another person in the Bible whom we see a false repentance is Saul.
और एक दूसरा एक झूठा जो या गलत जो मन फिराना है उसके व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं वो शाउल है.
We read in 1 Samuel 15.
और पहला शमूएल उसका 15 अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ते हैं.
13 थर्ड वर्स
उसका तीसरा वचन. पहला शमूएल 15 अध्याय 3 वचन.
फ्रॉम द फर्स्ट वर्स इफ यू रीड एक्चुअली शमूएल कम्स टू सॉल एंड टेल्स हिम दैट गॉड हैज टोल्ड टू स्ट्राइक अमालेक एंड अटरली डिस्ट्रॉय ऑल दैट ही हैज.
और वहां पे हम देखते हैं कि शमूएल जो शाऊल के पास आता है वो कहता है कि सेनाओं का भी कहता है कि तू सारे अमालेकों को पूरी तरह से मार गिरा.
And to put to death and do not spare him, Amalek, king of Amalek, and put to death both man and woman and child and infant, ox and sheep, camel and donkey.
और वो वहाँ पर कहता है कि जो कुछ उनका है अमालेकियों का बिना कोमलता किए नष्ट कर क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बच्चा दूध पीता गाय बैल भेड़ बकरी और ऊंट क्या गधा सबको मार डाल.
Everything he God told him to destroy everything.
और परमेश्वर ने उसको वहाँ पर कहा था कि सब कुछ नाश कर देना है.
But we read in 1 Samuel 15:9.
और उसके 9 वचन में हम पढ़ते हैं
that Saul and the people spared Agag and the best of the sheep.
वहां पे हम देखते हैं कि परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां वो वहां गाय बैलों को वहां से शाऊल लेकर आता है.
Yeah, the oxen, the fatlings, the lambs and all that was good and were not willing to destroy them utterly.
और मोटे पशु है या मेमने हैं जो कुछ अच्छा था वो सब कुछ शाऊल लेकर आता है उनको नहीं मारता है.
So after that, when Samuel asks Saul if he carried out the command of the Lord.
और उसके बाद शमूएल जो है शाऊल से पूछता है कि क्या उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया या नहीं.
It tells a lie that he has carried out the command of the Lord.
और यहाँ पर वो झूठ बोलता है कि हाँ मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है.
Then Samuel says, asks him, what about the bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen?
और 14 वचन में वो कहता है कि फिर ये भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रमना जो मुझे सुनाई देता है वह क्या है.
But we read below that Saul is trying to justify himself not accepting his disobedience.
और यहाँ पर जो शाऊल जो है अपने आप को बहाने बनाकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है वो अपनी गलती को नहीं मान रहा है.
This is a sign of false repentance that I am not ready to accept my fault completely. I try to justify myself.
और यही एक चिन्ह होता है कि जो झूठा जो मन फिराना होता है कि मैं अपने हमेशा एक बहाना निकाल कर अपने आप को साबित करने की कोशिश करता हूँ. मैं अपनी गलती को तुरंत नहीं मान लेता हूँ पूरी तरह से.
And then further we read that when Saul says that he agreed that he had sinned, but to honor him before the elders.
और शाऊल उसको कहता है कि हाँ मैं सहमत होता हूँ कि मैंने पाप किया है, लेकिन सारे इस्राएल के अगुओं के सामने अब तू मेरा आदर कर.
So he was not utterly, he didn't utterly turn back to God. He sought honor from people. He sought the honor of man.
और यहाँ पर शाऊल जो है पूरी तरह से परमेश्वर की ओर नहीं फिरा था. वो कहीं ना कहीं लोगों का आदर पाने की कोशिश कर रहा है.
We know that when we don't have a true repentance, we seek honor from man and we try to portray a different picture before man. We are not ready to accept our fault completely.
और जब हम सही मन फिराते नहीं हैं, तब हम लोगों के पास से शायद आदर पाने की कोशिश करते हैं, जो सही चित्र है उसको हम पूरी तरह से नहीं मान लेते हैं।
किसी नाउ वी सी पर्सन हु हैज ट्रू रिपेंटेंस
और यहाँ पर हम अभी देखते हैं कि जो सही मन फिराना है उसके बारे में देखते हैं।
व्हेन डेविड फेल इनटू एडल्ट्री विद बाथशेबा
और जब दाऊद जो बैतशीबा के साथ व्यभिचार में जब गिरा,
एंड देन ही हैड अ हैंड इन मर्डरिंग हर हस्बैंड आल्सो उरिया,
और जो उरिया जो वो बैतशीबा का जो पति था उसको भी उसने मरवा डाला था,
इन सेकंड सैमुअल 12
और दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय में।
In the 13th verse, it says, David said to Nathan, when Nathan showed him his sin, he immediately accepted it.
और यहाँ पर देखते हैं कि जब नाथान नबी ने उसके पाप को दाऊद को जब बताया, तब दाऊद ने तुरंत ही अपने पाप को मान लिया।
That I have sinned against the Lord. He didn't justify or say anything. He just accepted as it is.
और वहां पर वो अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जैसा वो है उसी हालत में उन पाप को वो अंगीकार या मान लेता है तुरंत।
You know, in Psalms 51, his cry out to God to forgive his sin.
और हम जानते हैं 91 भजन संहिता में हम देखते हैं 51 भजन कैसे वो अपने मन फिराने के उस पुकार को उस भजन के अंदर वो लिख रहा है।
He says, against God and against you and you only have I sinned, he says.
और वो कहता है कि मैंने प्रभु तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है।
He sinned against a woman and he murdered a man, her husband, but he came to know that he had sinned against God himself.
और यहाँ पर एक स्त्री के साथ वो व्यभिचार करता है, उसके पति को मरवा देता है, लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है।
True repentance will really lead us to know that we have grieved God.
और जो सही मन फिराना जो होता है वो हमारी अगुवाई करता है, जहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमने परमेश्वर के मन को दुखाया है।
I have grieved God with my sin.
और मैंने मेरे पापों के कारण परमेश्वर के मन को खेदित किया है।
We need that God has to. I need to ask Lord, give me that conviction of my sin that I know how I have grieved you, Lord Jesus.
और हमें मांगना है परमेश्वर से, प्रभु मेरे पापों का बोध मुझे तू दे, ताकि प्रभु मेरे पापों से कितना अधिक मैंने तुझे चोट पहुंचाई है, तुझे दुखी किया है प्रभु।
The same thing we see in prodigal son. When he had gone away from his father and came back, he repented properly, thoroughly.
और वैसे ही हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब वो वापस पिता के पास लौटता है, तब उसका मन फिराना पूरी तरह से वो सही होता है।
In Luke 15,
लूका उसका 15 अध्याय,
the 17th verse,
लूका 15 उसका 17 वचन,
says when he came back to his senses,
और वहां लिखा है कि जब वो अपनी समझ या अपने आपे में वो आया,
when we are in our sin, we are out of our senses, we are not aware of God's presence.
और जब हम पाप में होते हैं, पाप में जीवन बिताते, परमेश्वर की उपस्थिति से हम अनजान रहते हैं, हम अपनी समझ में नहीं होते हैं।
God in his mercy brings us back to our senses.
और परमेश्वर अपनी दया के अंदर हमें अपनी वो सही समझ के अंदर वो लेकर आता है।
And then he says, the prodigal son says that how many of my father's men, hired men have more than enough bread, but I am dying here with hunger.
और वो वहां पर कहता है कि बहुत सारे मेरे पिता के कितने मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है, पर मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ।
I will get up and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight.
और 18 वचन में, अब उठकर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है।
I am no longer worthy to be called your son.
अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं।
Make me as one of your hired men.
और मुझे अपने एक मजदूर के समान तू रख ले।
This is the attitude of a truly repentant person.
और ये वो स्वभाव है जो एक सही रीति से मन फिराता है उस व्यक्ति का।
He is really from his heart, not just in the words, but really from the heart. He knows his unworthiness, complete unworthiness.
और केवल शब्दों में नहीं, लेकिन अपने हृदय में पूरी तरह से ये व्यक्ति जानता है कि वो पूरी तरह से अयोग्य है।
And when he from the heart he accepts his unworthiness, the father says he welcomes the son.
और जब वो पूरी तरह से हृदय से अपनी अयोग्यता को जानता है, तब पिता उसको उस बेटे को पूरी तरह से वो गले से लगाता है, उसका आमंत्रण करता है।
And he puts a ring on his finger.
और अंगूठी उसके हाथों में वो देता है।
And the father celebrates with him.
और पिता जो है उसके साथ उत्सव को मनाता है।
He sees also the thief on the cross, he repented at the last moment.
और हम वो भी देखते हैं कि जब जो जो डाकू जो था उस क्रूस के अंदर, क्रूस के ऊपर, वो अंतिम समय में उसने मन फिराया।
He just said one sentence to Jesus that he deserved the punishment that was due to him.
और उसने एक ही शब्द यीशु मसीह से तब कहा कि जो सजा वो ले रहा है उसके योग्य वो था.
That means he said that he deserved hell actually. He deserved hell. That's what he told Jesus.
और वास्तव में यीशु से वो कह रहा था कि वो सच में उस नरक के योग्य वो है.
True repentance will bring us to a place where we can say from our heart, the Lord, I deserve hell.
और जो सही मन फिराना जो होता है उसके अंदर हम उस स्थान पे आ जाते हैं जहां पर हम कहते हैं कि प्रभु मैं उस नरक के योग्य हूं मैं.
And immediately Jesus replies that today you will be with me in paradise.
और यीशु मसीह कहता है कि आज तू स्वर्गलोक में मेरे साथ होगा.
Repentance doesn't come. It is not some religious activity that we do.
और मन फिराना जो है कोई धार्मिक गतिविधि या कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे हम करते हैं.
It is when we see God that we come to know. When we see the Word of God and when we see God, we come to know how much lacking we are.
और जब हम परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को देखते हैं तब हम जान पाते कि कितनी कमी घटी हमारे अंदर है.
In Isaiah 6
और यशाया उसका 6 अध्याय.
Here Isaiah sees a vision of God's holiness.
और यहाँ पर यशाया जो है परमेश्वर की पवित्रता के संबंध में एक दर्शन को देखता है.
And from the first verse we see that the seraphim calling out to one another saying, when Isaiah saw the vision of God's holiness and the seraphim calling out to one another saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory.
और वहां लिखा है कि उसने उनको सराफ दिखाई दिए, उनके छह छह पंख थे और वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है.
When he saw this, he immediately saw his own unclean lips.
और जैसे ही उसने इस बात को देखा तो उसने अपने आप को अपवित्र मान कर देखा.
He says, "Woe is me, I am a man of unclean lips."
और वो वहां पर कहता है कि हाय मुझ पर, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ.
I live among people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts.
और मैं तो अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है.
When we see in the Word of God something that is not true in our lives, this is what really we see how much far we are from God.
जब वचन के अंदर हम ऐसी कोई चीज को देखते हैं जो हमारे जीवन के अंदर वो बात सच नहीं है, कितने अधिक हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं.
And when Isaiah says it from his heart that he is a man of unclean lips, one of the seraphim flew to him with a burning coal in his hand and which he had taken from the altar with a pair of tongs.
और जब यहाँ पे पूरे हृदय से जब यशाया जो है अपने आप को अशुद्ध होते वाला मनुष्य मान लेता है तब एक सराप जो है हाथ में जो अंगारा लिए आता है और उसके चिमटे से वेदी पर से उठा के उसको वो छूता है.
He touched his mouth with it and said, "Behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is forgiven."
और सात वचन में कहता है कि उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म अब दूर हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं.
When he acknowledges sin, it can be seen as the Holy Spirit coming, taking our burning that sin away.
और जैसे कि जब वो पाप को मान लेता है, जैसे कि वो पवित्र आत्मा आता है और उस आग के द्वारा उस पाप को जलाकर दूर कर देता है.
So this is what God we cannot remove the sin in our heart. We just confess our sin and God comes and the Holy Spirit removes that, saves us from that sin more and more.
और हम हमारे हृदय में से इन पापों को दूर नहीं कर सकते, हम केवल इसको अंगीकार कर सकते हैं और तब पवित्र आत्मा आकर उस पाप को दूर कर देता है.
It takes away, it's written, the iniquity is taken away from you.
यहाँ पे लिखा है कि तेरा अधर्म, तेरा पाप जो है तुझसे दूर कर दिया गया है.
So when we cry out to God honestly, the Holy Spirit is a person who removes that sin from our hearts.
और जब हम ईमानदारी से परमेश्वर को पुकारते हैं उस पाप को मानते हुए, तब वो पवित्र आत्मा जो है हमारे हृदय से उस पाप को दूर करता है.
And he fills us with the Holy Spirit.
और वो अपने पवित्र आत्मा से हमको भर देता है.
Even in the life of, even when Job, we read that in 42, chapter 42, Job 42.
और अय्यूब उसका 42 अध्याय में हम देखते हैं.
It says, the fifth and sixth verse, my eyes have heard of you, but now my eyes see you.
और वहाँ पे पांच वचन में अय्यूब उसका 42 अध्याय वचन 5, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है.
I repent in dust and ashes.
और इसलिए मुझे उस पर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ.
God opened his eyes to see his great, God's greatness.
और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला ताकि वो परमेश्वर की महानता को देख सके.
And when he saw God's greatness, he saw his own sin and his own self-righteous ways of life, and he repented.
और जब उसने परमेश्वर को देखा तब वो अपने पाप को, अपनी स्वधार्मिकता को देखता है और उससे पश्चाताप वो करता है.
We see this cry against sin in the life of Paul.
हम पौलुस के जीवन के अंदर भी पाप के प्रति जो जो पुकार जो होता है वो उसके मन के अंदर हम देखते हैं.
In Romans 7,
रोमियो उसका सात अध्याय, रोमियो की पत्री सातवां अध्याय,
from 24 and 25.
रोमियो सात अध्याय 24 और 25.
He said, when Paul saw the law of sin making him captive, he cried out, "Wretched man that I am!"
और वहाँ पे कहता है कि Romans 8,
7, 7.
Sorry, माफ करना, रोमियो सात उसका 24 और 25. वहाँ लिखा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा?
Who will rescue me from this body of death?
और मुझे मृत्यु के देह से कौन छुड़ा सकता है?
He really came to his, he came to a knowledge that he cannot, he is totally failing against this sin of lusting.
और यहाँ पर वो पूरी तरह से वो जानता है या मान लेता है कि पूरी तरह से वो असहाय है उस वासनाओं के जो पाप है उसमें विजय पाने के लिए.
But immediately he says, "Thanks be to God through Jesus Christ our Lord."
लेकिन तुरंत उसके बाद 25 वचन में कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो.
When he says that he is wretched, he also has a hope that there is God who is able to save him from that.
और जब वो कहता है कि मैं कैसा अभागा हूँ, कितना मैं बड़ा पापी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास एक बड़ी आशा भी है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उसको बचा सकता है.
When I see myself falling into the same sin again and again and want to be desperately free, I cry out to God and he gives me the faith that God through Jesus Christ will free me from that sin.
और जब मैं बार बार एक ही पाप के अंदर बार बार गिरते रहता हूँ, तब मैं बड़े बड़े आतुरता के साथ जब उसको पुकारता हूँ तो परमेश्वर उस आशा को मुझे देता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मुझे इस पाप से छुड़ा सकता है या छुड़ाएगा.
And God shows us our sin, there is no condemnation. That we read in Romans 8 that after that, after Paul says that thanks be to God, and then he says in the Romans 8 that there is no condemnation to those who are in Christ Jesus.
और जब परमेश्वर हमारे पापों को हमें दिखाता है तो उसमें कोई दंडाज्ञा नहीं होती, क्योंकि उसके तुरंत बाद रोमियो 8:1 में कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है.
Paul's cry is a cry of hope, not a cry of condemnation or discouragement.
और यहाँ पर पौलुस की जो पुकार है वो कोई दंडाज्ञा या कोई निराशा की ओर से नहीं है, लेकिन वो एक आशा के साथ परमेश्वर को पुकारता है.
And that is why he later he says in the Romans 8 that God has fulfilled the law in his heart.
और उसके बाद वो रोमियो 8 अध्याय में कहता है कि परमेश्वर ने ही उस व्यवस्था को उसके हृदय में पूरी की है.
So when we honestly cry out to God, God can fulfill the law that whichever is law that is not fulfilled in our life, he can fulfill it in our lives.
और जब हम पूरी तरह से ईमानदारी से परमेश्वर को पुकारते हैं तो जो व्यवस्था हमारे जीवन में अब तक पूरी नहीं, परमेश्वर उन व्यवस्थाओं को हमारे जीवन के अंदर पूरा करता है.
In second Corinthians,
दूसरा कुरिन्थियों,
chapter 7,
दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय,
we read about godly sorrow.
और यहाँ पे ईश्वरीय जो शोक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं.
Second Corinthians,
10 verse.
Yeah, 10th verse.
क्योंकि परमेश्वर भक्ति का ऐसा शोक पश्चाताप उत्पन्न भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिमाण परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता परंतु शारीरिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है.
Yes, this is what true repentance does. It doesn't leave a regret in our lives.
और यही मन सच्चा मन फिराना जो होता है वो हमारे जीवन में वो खेद उत्पन्न नहीं करता है.
But the sorrow of the world produces death, spiritual death.
और जैसे परमेश्वर भक्ति का शोक होता है, संसारिक शोक जो है मृत्यु उत्पन्न करता है.
And in the 11th verse we know what all the godly sorrow that repentance produces in our lives.
और कौन से सारे क्षेत्रों के अंदर जो भक्ति का शोक हो कैसे वो सारी चीजें हमारे जीवन में उत्पन्न करता है.
It in the 11th verse it says what vindication of yourselves.
वहां पे लिखा है कि तुम्हें कितना उत्साह और प्रत्युत
What indignation, what fear, what longing, what zeal, what avenging of wrong.
और वहां पे लिखा है, इस बात से कि मैं तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह, प्रत्युत्तर रीस भय, लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ।
These are the things that that happen when really we have the true repentance in our lives.
और जब सच में हम मन फिराते हैं, सच्चा मन पश्चाताप हमारे जीवन में आता है, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में उत्पन्न होती है।
We also see in the life of Zacchaeus the true repentance in his life.
और हम जक्कई के जीवन के अंदर भी सही पश्चाताप या सही मन फिराना देखते हैं।
He was ready for restitution for all the money that he had gained in a wrong way.
और जो गलत रीति से उसने पैसों लोगों के ले लिए थे, उसको वो ठीक करने का स्वभाव उसके अंदर हम देखते हैं।
He saw Jesus and he saw his own areas where he is wrong and he immediately confessed to Jesus that he is going to set right everything.
और जैसे उसने यीशु मसीह को देखा, तो उसने अपने जीवन के उन क्षेत्रों को भी देखा कि जहां पर उसको ठीक करना है, और उसको तुरंत ही उसने उन क्षेत्रों में ठीक किया सब कुछ।
And Jesus immediately this is in Luke 19 actually.
और लूका 19 अध्याय में इस बात को हम पढ़ते
हैं। And Jesus says that salvation has come to this home.
और यीशु वहां कहता है कि उद्धार आज इस घर में आया है।
When we truly repent, salvation will come to us and our homes also.
और जब हम सही में मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हमारे हमारे जीवन में, हमारे घरों में सच में उद्धार आता है।
Jesus also in Revelation 5 out of 7 churches he tells them to repent.
और प्रकाशित वाक्य के अंदर जो कलीसिया है, 7 कलीसिया, उसमें से 5 कलीसिया को कहता है मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए कहता है।
He says about some good things in them in the churches, but then he says for each church there is something that God tells them to repent. Jesus tells them to repent.
और कहीं ना कहीं यीशु मसीह उनको हर एक कलीसियाओं में अच्छी अच्छी बातें उनको जरूर कहता है, लेकिन ऐसी भी कोई बातें होती जहां पर उसे पश्चाताप या मन फिराने के लिए यीशु मसीह उनको कलीसियाओं से कहता है।
Church in Ephesus, he says, you have left your first love.
Ephesus की कलीसिया से वो कहता है कि तूने अपने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया है।
Remember when where you have fallen, repent and do the deeds you did at first.
और वहां लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 2:5 में, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और अपने पहले के समान तू काम कर।
Then for Laodicea church he says you are neither cold nor hot.
और लौदिकिया की कलीसिया को वो कहता है कि तू ना गर्म है ना ठंडा है।
You have become lukewarm.
लेकिन तू गुनगुना हो गया है।
And then he says to repent.
और इसलिए वो कहते हैं अब तू मन फिरा।
Because they didn't have a true picture, they didn't have a light about their true condition.
क्योंकि इन लोगों को अपनी सही अवस्था के ऊपर कोई प्रकाश नहीं था।
And that might be probably because when God showed them something, they just put it aside and then didn't take it seriously.
और ये इसलिए शायद हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने शायद उनको कोई बातें बताई होगी और उसने गंभीरता से नहीं लिया और उसको ऐसे ही रख दिया, रख छोड़ दिया।
Finally, I would like to just say one verse in 2 Peter 3:9.
और दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 9 वचन, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय वचन 9।
It says the Lord is not slow about his promise as some count slowness but is patient toward you not wishing for any to perish but for all to come to repentance.
और वहां लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले.
God is all waiting patiently for us to repent.
और परमेश्वर बड़ी धीरज से हमारे लिए राह देखता है कि हम मन फिराएं.
He is much more patient than any of us.
और हम में से कईयों से बढ़कर वो धीरजवान परमेश्वर वो है।
He is so long suffering and so compassionate.
वो इतना धीरज से सहने वाला है, इतना करुणामय परमेश्वर वो है।
He is so merciful towards us.
और वो हमारे प्रति इतना दयावंत है।
He waits for years and years for us to repent and that nature of his should lead us to repentance.
और सालों दर साल परमेश्वर हमारे लिए राह देखता है कि मन फिराव, और इस प्रकार का परमेश्वर का स्वभाव हमारे प्रति धीरज का जो है, हमें मन फिराव की और अगुवाई करना चाहिए।
Let us all, including me, really ask Lord to show us areas where we have gone away from Him and repent.
और सच में हम आइए मेरे साथ मिलकर, हम सब मिलकर परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर उन क्षेत्रों में जहां हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, उन क्षेत्रों के अंदर हम मन फिरा सके।
May God help us.
परमेश्वर हमारी सहायता करे।
Yes, I thank God for what we heard today.
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो बातें आज सुनी है.
Many people understand repentance in a negative way.
और बहुत लोग जो है मन फिराना या पश्चाताप को नकारात्मक बात में समझते हैं.
It is something a sad thing, such a feeling many people have.
और बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि वो एक दुखद भावना है या ऐसा ऐसी चीज है.
But the New Testament, when we see, when people repent, it actually it refreshes and renews their life.
लेकिन हम नए नियम में देखते हैं कि जब लोगों ने मन फिराना है तो उसने उनके जीवन को नया किया है और उसको तरोताजगी से भर दिया है.
It brings a lot amount of clearing of their own hearts.
और उनके हृदय को ये मन फिराने के द्वारा उनका हृदय जो पूरी तरह से साफ हो जाता है.
So we should understand repentance as something good, something welcoming, something good for us.
और ये मन फिराना या पश्चाताप करना हमको बहुत ही अच्छे से उसको समझना है और उसको आमंत्रित करना है, स्वागत करना है हमारे जीवन के अंदर.
I was reading in Matthew chapter 3.
और मत्ती उसके 3 अध्याय में मैं पढ़ रहा था.
Where John the Baptist was speaking about repentance, preparing the way for Jesus.
और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो मन फिराने के बारे में कहता है कि वो प्रभु का मार्ग तैयार करने के बारे में वो प्रचार करता है.
And many people came to him to receive the baptism from John the Baptist.
और बहुत सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा पाने के लिए उसके पास आते थे.
As a mark of their repentance.
और वो मन फिराने के एक चिन्ह के रूप में.
So along with the many others who came, we read in Matthew chapter 3, verse 7.
और मत्ती 3 और 7 वचन के अनुसार हम देखते हैं.
Many Pharisees and Sadducees also came for baptism by John the Baptist.
और यहाँ पे लिखा है कि बहुत ही फरीसियों और सदूकियों जो है बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा के पास आए.
But John reserved some very strong words for them.
और यूहन्ना बपतिस्मा हम देखते कि यहाँ पर बहुत ही कठोर शब्दों से उनसे बात करता है.
These Pharisees and Sadducees are the Bible scholars of that time.
और उस समय में ये फरीसी या सदूकी जो होते थे वो बाइबल का प्रचार करने वाले ज्ञानी होते थे, स्कॉलर्स होते थे.
Who knew the Bible very well and who boasted about it also.
वो वचन का ज्ञान बहुत अच्छे से रखते थे, बाइबल को बड़े अच्छे से जानते थे और उसके ऊपर घमंड भी करते थे.
But John the Baptist is addressing them as brood of vipers.
लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले उनको सांप के बच्चों कह के संबोधित करता है.
So I was thinking why that such a strong words were used by John.
और मैं सोच रहा था क्यों यूहन्ना बपतिस्मा ने इतने कठोर शब्दों से उनसे बात की.
So what happens when one has great knowledge about something, including the scriptures, and be proud about it.
और कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग जिनके पास वचन का बहुत सारा ज्ञान होता है हर प्रकार से और जो उसके ऊपर बहुत ही गर्व या घमंड करते हैं उस ज्ञान के ऊपर.
That knowledge remain in their head, in their mind level.
और ये जो ज्ञान जो है वचन का ज्ञान उनका दिमाग के अंदर ही वो रहता है.
They can teach others very well.
वो लोगों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं.
But it has not become their life, or they are not really living that.
लेकिन वो जो सिखा रहे हैं वो जीवन उनके वो वचन उनके जीवन नहीं बना है और वो उसको नहीं जी रहे उस प्रकार.
So in such a situation, it can be like that. Knowledge can be like a poison.
और इस प्रकार अगर यदि है तो वो जो ज्ञान जो उन्होंने पाया है वो एक जहर के समान हो सकता है.
So that is why John the Baptist saying, "You brood of vipers."
और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा करने यहाँ पर कहता है कि हे सांप के बच्चों.
So that it is like the poison of snake what was in them.
और इसका मतलब कि जैसे कि सांप के अंदर जैसे जहर होता है उन लोगों के अंदर भी उस प्रकार का जहर है.
Then he said in verse 8, therefore bear fruit in keeping with the repentance.
और 8 वचन में वो कहता है इसलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ.
So repentance always accompanied by fruit.
और मन फिराना जो है हमेशा एक फल लाने से जुड़ा हुआ होता है.
Jesus told, a tree is known by its fruit.
और यीशु मसीह ने कहा जो पेड़ है अपने फलों से पहचाना जाता है.
And anybody who is repentant
जो कोई भी मन फिराता है
true repentance will always change his life.
और जो उसने सही रीति से मन फिराया तो उसका जीवन वो बदल देता है.
It's good to note that that expression written fruit in line with the repentance.
और इस बात को यहाँ पे ध्यान से हम देखे लिखा है कि मन फिराव के योग्य तुम फल लाओ.
So that is something which we can look at ourselves. Is our repentance had made some change in our life?
और ये हम अपने जीवन के अंदर जांच सकते हैं कि जो मन फिराव में जो मैंने किया है क्या उसने मेरे जीवन में कोई बदलाव लाया है या नहीं लाया है.
Same incident mentioned in Luke Gospel chapter.
लुका के सुसमाचार में हम देखते हैं.
So what is this fruit of repentance John is explaining there?
और यूहन्ना जो है ये मन फिराव का जो फल जो है उसके बारे में वो समझा रहा है.
For example, to tax collectors, he is saying that do not collect more taxes than you are ordered to do.
और वहाँ पे लिखा है 3:14 के अंदर लिखा है कि
Luke 3:14
वहाँ लिखा है कि सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा हम क्या करें. उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव न करना और झूठा दोष न लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना.
And to soldiers also he told don't collect money by force from anybody or don't accuse anybody falsely and be content with your wages. Don't take any bribe.
और वहाँ पे जैसे सिपाहियों से कहता है कि किसी के ऊपर उपद्रव न करना, किसी के घूस मत लेना, अपने वेतन के ऊपर ही संतोष करना.
So he was saying if you are really repentant, it should bring about some change in your life.
और इसका मतलब कि ये सच में तुमने मन फिराया है तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए.
It is not knowing certain things and appreciating about it.
और केवल चीजों को जानना और उसको सराहना, उसकी तारीफ करना ही काफी नहीं है.
And John in that chapter letter he told that I baptize you with water.
और 16 वचन में वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ.
Sorry, Matthew chapter 3:11.
और 3:11 के अंदर.
And he said, but somebody is coming. After me, mightier than I.
और लेकिन परंतु वह जो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, वचन 16.
And I am not fit to remove his sandals.
और मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
और वही है जो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा.
And in Matthew chapter 3, verse 12.
और मत्ती 3:12 में हम देखते हैं.
He also said he has a winnowing fork in his hand.
और वहाँ पे लिखा है कि उसका सूप उसके हाथ में है.
A winnowing fork is something which people use, farmers use in villages to separate wheat from chaff.
और ये सूप जो होता है जो किसान गांवों के अंदर इस्तेमाल करते ताकि गेहूं में से वो सारे भूसे को वो दूर कर सके.
So it's mentioned in Matthew chapter 3 verse 12, he will thoroughly clear his threshing floor.
और वहाँ पे वो कहता है कि अपने सूप उसके हाथ में और अपने खलियान को अच्छी रीति से वो साफ करेगा.
And he will gather the wheat into the barn, but he will burn the chaff with the unquenchable fire.
और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसे को उसी आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं.
So the chaff is something which is light. It has a appearance of a actual grain, but inside there is no content.
ये भूसा क्या होता है कि वो अनाज के समान दिखने वाला ही उसका दिखावा होता है, लेकिन उसके भीतर अनाज के समान कुछ भी नहीं होता, खाली वो होता है.
So Jesus is doing a process of separating the real grain from the grain which appear to be grain, but it is not really good grain.
और यीशु मसीह यहाँ पर एक प्रक्रिया कर रहा है जिसके अंदर वो अनाज को जो सही अनाज है और दूसरा जो भूसी है और जो अनाज के समान दिखता है लेकिन नहीं है उसको वो अलग करता है.
Chaff is a useless thing. It is good for only burning.
और भूसी जो है वो किसी काम के योग्य नहीं है, वो केवल जलाया जा सकता है.
It flies in the air.
और वो केवल हवा में उड़ता है.
So, that is something which helped me. It is good to allow God to our Holy Spirit to do that work of separation in our life.
और ये बात मैं सोच रहा था कि हमें पवित्र आत्मा को परमेश्वर को अनुमति देना है कि ये अलगाव का कार्य या प्रक्रिया वो हमारे जीवन में कर सके.
retain the real heavy good grains.
और ताकि हमारे जीवन के अंदर जो सही अनाज के दाने उसी को वो लाके रख सके.
The chaff which has given impression to others like it is a grain but it is not.
और ये भूसी के समान जो एक भूसा भूसी जो है वो लोगों को दिखावा करता है कि वो अनाज नहीं लेकिन अनाज के समान दिखाने का एक दिखावा कर रहा है लोगों के सामने.
It is only a show.
और ये केवल एक दिखावा है.
Such a thing will drive you out from your life.
और ये सब कुछ हमारे जीवन में से हमको दूर करना है.
The actual grain, the real thing, the genuine thing, that is what is useful.
और जो सही अनाज का दाना जो है वो जो वास्तविक या सही है वही उपयोगी है.
Amen.
अभी जो वचन सुने धन्यवाद भाई लोग को. और आज मैं तीन विषय में प्रभु के वचन से बांटना चाहता हूँ. पहला है प्रभु यीशु मसीह अपने जन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. और दूसरा है शैतान हर समय प्रभु की जन को परीक्षा करते हुए अपनी तरफ खींचना चाहता है. और तीसरा है प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों से अपने बगाल को बलवान बनाते हैं. आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें. प्रभु जी हमें इस समय तैयार करें और इस संगति में जो भाई बहन जुड़े हैं हर एक को पवित्र आत्मा से भरिए और मुझे भी अगुवाई कीजिए कि मैं वे भाषा में बोल नहीं सकता हूँ. इसीलिए प्रभु आपसे मांगता हूँ, आप में कोई भी असंभव नहीं है. विनती करता हूँ और अगुवाई मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम में. सभी को जय मसीह की. मौके के लिए अगुआ जनों और सभी भाई बहनों को धन्यवाद जो मुझे इस मौका मिला. प्रभु यीशु ने पिता से प्रार्थना करते हुए कहा पिता इन चेलों को दुष्ट यानी कि शैतान से बचाइए क्योंकि शैतान हमें परीक्षा में हर घड़ी ले जा सकता है. प्रभु ने कहा यूहन्ना की पत्री में उसका 17वां अध्याय 15 पद में. किरण ब्रदर थोड़ा हेल्प कर देंगे.
यूहन्ना
चैप्टर 17 वर्स 15
यूहन्ना 17 उसका 15 वचन. मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले परंतु यह कि तुमने उस दुष्ट से बचाए रख.
प्रभु ने पिता से यह प्रार्थना किया कि अपने जनों को शैतान से बचाए. हर समय शैतान हमें अपनी ही दंड में शामिल करना चाहता है परंतु प्रभु हमें उसकी दंड से बचाने के लिए पिता परमेश्वर के दाएं हाथ की ओर अभी भी बैठकर हमारे लिए हर घड़ी हर रोज प्रार्थना करते हैं. इसीलिए हमें डरना नहीं है क्योंकि हमारे प्रभु हर समय हमारी तरफ है. रोमियो की पत्री चैप्टर 8 वर्स 34
रोमियो 8:34 वहां लिखा है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा. मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है.
मसीह की पिता की दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं. प्रभु के वचन के अनुसार हमें ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर के सम्मुख हर समय हर घड़ी जिंदा रहते हैं और निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी बगाल वो शैतान न ले जाए और असुरक्षित नहीं रहे. इसलिए अभी जो परिस्थिति है उनसे हमें नहीं डरना चाहिए मगर शैतान जो है हमारे जीवन में बाधा और विघ्न ला सकता है. इसीलिए प्रभु को प्रार्थना करते हुए इसी वचन को दावी करते हुए जीना चाहिए। हिब्रू इब्रानी की पत्री चैप्टर 7:25
7:25 इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है।
इसलिए पहला तो हम प्रभु में हैं कि नहीं अपने आप को प्रश्न करना चाहिए। अगर हम प्रभु में हैं तो हमारे सुरक्षा के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हर घड़ी जिंदा है। ये पहला है, प्रभु हमें हर समय अपनी प्रार्थना से बचाता है। दूसरा है, शैतान हमें हर घड़ी परीक्षा में डालना चाहता है। ऐसा है, शैतान कमजोर भाई बहनों को परीक्षा में डालने के लिए हमारी चारों ओर हर समय घूमता ही रहता है। इसलिए हमारा काम हर समय जागते रहना और विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए ताकि उसकी परीक्षा से हम बच सकें। पहला पत्रुस चैप्टर 5:8
पहला पत्रुस उसका 5:8 वहां लिखा है, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
इसमें हमें दो काम करना है इस वचन के अनुसार। एक तो हमें सचेत रहना है और दूसरा हम निर्भीक होकर नहीं रहना है, जागते रहना है प्रभु में। तब ये प्रभु में हम ये दो काम करेंगे तो ये शैतान की परीक्षा से हम बच सकते हैं। क्योंकि विश्वास ही एकमात्र हथियार है जो प्रभु हमसे चाहते हैं। तब पत्रुस को परीक्षा होने वाला था और ये बात प्रभु यीशु को पहले से ही पता था, फिर भी प्रभु ने परीक्षा में न पढ़ने के लिए पत्रुस के लिए प्रार्थना नहीं किया। पत्रुस का विश्वास न टूटने के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया। लुका रचित सुसमाचार चैप्टर 22:31-32
लूका 22:31-32 शमोन हे शमोन देख शैतान ने तुझे लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना।
विश्वास ही वो एकमात्र हथियार है और प्रभु हमसे वही विश्वास ही चाहते हैं और हमें प्रभु की तरफ 180 डिग्री से फिरना है और प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर जीना है। प्रभु ने शैतान को परीक्षा नहीं करने के लिए पत्रुस के लिए प्रार्थना नहीं किया, मगर उसको विश्वास में रहने के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा करने के लिए प्रार्थना किया है। इसीलिए प्रभु ने हमें भी इसी तरह प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। लुका रचित सुसमाचार चैप्टर 11:4 में हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रभु ने प्रार्थना के विषय में यही सिखा है। किरण ब्रदर
11:4 ना
जी,
और हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला।
परीक्षा में न ला, ऐसे यह शैतान हमें परीक्षा करना चाहता है, मगर हम कैसे उस परीक्षा से बच सकते हैं, अलग हो सकते हैं ये। और तीसरा, प्रभु हमें अपने सेवक अर्थात एल्डर डिकन से अपनी बगाल को बलवान बनाते हैं, अपनी सेवकों से हमें बलवान बनाते हैं। प्रभु का सेवक हमारे मध्य में रहकर, हमारे इर्द गिर्द रहकर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए परिश्रम करते हैं। पहला थेसलुनीकी चैप्टर 5:12-13
फाइव का कौन सा 12 and 13 बा
12 and 13
ए भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे है और तुम्हें शिक्षा देते उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो आपस में मेल मिलाप से रहो।
हमारे लिए वो प्रभु का जन बहुत परिश्रम करते हैं इसीलिए उनको ज्यादा आदर करते हुए और एक आपस में मिल कर रहना चाहिए। प्रभु का सेवक अपना सब कुछ त्याग कर अपने आप को इनकार करते हुए हर समय जागते हुए हमारी अपने बगाल की चिंताओं में लगे रहते हैं वो भी अपना सब कुछ क्यों छोड़ना न पड़े तब भी वो खुशी होकर ही हमारी प्राण की वो रक्षा में लगते हुए हैं। इब्रानी के पुस्तक चैप्टर 13 वर्स 17
अपने अगो की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें न कि ठंडी सांस ले लेकर क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं।
वो अपनी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि हमारे प्राणों के लिए हम कैसे प्रभु की विश्वास में बढ़ सके कैसे मजबूत हो सके कैसे प्रभु में आनंदित हो सके इसीलिए वो अपना सब कुछ भी छोड़कर व त्याग कर अपने आप को प्रभु में सौंप कर हमारे लिए फिक्री करते हैं इसीलिए हम लोग को हमारे अगुओं को आदर और प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद ब्रदर। थैंक यू।